अच्छा भाई, कल हमने इस इल्म यानी इल्म सर्फ की तारीफ, मौजू और गर्ज़ गायत पढ़ ली भाई। इल्म सर्फ का दूसरा नाम इल्म तसरीफ है। तसरीफ बाब तफ़ईल, वही सर्फ सौद रा फा, इसी को किस में ले गए, बाब तफ़ईल तसरीफ सौद के साथ। तो इसको इल्म सर्फ भी कहते हैं और इल्म तसरीफ भी कहते हैं। तो कहीं अगर इल्म तसरीफ का लफ्ज आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना कि ये कौन सा इल्म है भाई। वही इल्म सर्फ का एक नाम क्या है, इल्म तसरीफ भाई। तो इस इल्म तसरीफ की तारीफ, मौजू और गरज वायत आपने पढ़ ली और पता चल गया कि इस इलम में किसके बारे में बहस होगी, सीगों के बारे में। अरबी कलिमात मिन हैसु सीगा, किस हैसियत से, सीगा होने की हैसियत से कि कौन सा सीगा है भाई, माजी है, मुजारे है, अमर है, नहीं है, इसमें फाइल है, इसमें मफूल है, जर्फ है, इसमें आला है, इसमें तफजील वगैरह, कौन सा सीगा है भाई, और इसका मकसद क्या है, इसका फायदा क्या है कि इंसान लफ्जी गलतियों से बच जाता है भाई। जिसको इल्म सर्फ जिसने पढ़ा होगा, मुकरिमुन कहीं लिखा हुआ है तो वो उसको मुकरिमुन ही पढ़ेगा। जिसने इल्म सर्फ नहीं पढ़ा वो हैरान होगा कि इसको मैं मुकरिमुन पढ़ूं, मुकरमुन पढ़ूं, मकरमुन पढ़ूं, मिकरमुन पढ़ूं, क्या पढ़ूं, उसको वो गलती कर जाएगा भाई। मैंने बताया आपको भाई, ये इल्म सीगा असल में तो मुसन्निफ ने फारसी जुबान में लिखी भाई, और कमाल किया मुसन्निफ ने कि एक कैद बंद की तकालीफ बर्दाश्त करते हुए कि अंग्रेज की सख्त तरीन जुल्म और बर्बरियत के बावजूद उन अहवाल के अंदर उन्होंने इतनी कीमती किताब लिखी भाई। भाई फारसी जुबान में इस किताब का लुत्फ ही बहुत ज्यादा है भाई, और फिर फारसी जुबान में चंद लफ्जों में जो बात हो जाती है, उर्दू जुबान में कई लाइनों में भी जाकर वो बात पूरी नहीं होती भाई। फारसी बड़ी जामिया जुबान है भाई, बड़ी कदीम, बड़ी वसीअ जुबान है। तो फारसी किताब से भी पढ़ लिया करूंगा, उसका माना और मफहूम आपको समझा दिया करूंगा, और फिर उसके बाद उसके साथ ही उर्दू किताब भी पढ़ लिया करेंगे इंशाल्लाह। ये फिर उर्दू किताब को तो सिर्फ फिर मुताला ही करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ खुद ब खुद समझ में आता चला जाएगा। अब देखिए भाई किताब पर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, अल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल। तसरीफ, सर्रफ युसर्रिफ, तसरीफ का माना है फेरना, पलटना, एक हालत से दूसरी हालत की तरफ बदलना। मसलन कोई गरीब है तो उसको अमीर बना दिया, कोई अमीर है तो उसको गरीब बना दिया, कोई खुश है तो गम में मुबतला कर दिया, कोई गम में है तो खुश कर दिया, कोई बादशाह है तो उसको फकीर बना दिया, कोई फकीर है तो बादशाह बना दिया। तो यह है अहवाल का, यह है बदलना फेरना अहवाल का भाई। और भी यदि ही उसके हाथ में है, यानी उसके कब्जा कुदरत में है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए कि अल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल, कि उसके कब्जा कुदरत में है अहवाल का फेरना, मुख्तलिफ अहवाल को एक हालत से दूसरी हालत की तरफ फेरना। ये किसके कब्जा कुदरत में है? अल्लाह के कब्जा कुदरत में है भाई, अल्लाह के कब्जा कुदरत में है। और मैंने मुख्तलिफ अहवाल जिक्र कर दिए भाई, मालदारी है, गुर्बत है, बादशाही है, फकर है, खुशी है, गमी है, इत्मीनान और सुकून है, परेशानी है। तो एक हालत से दूसरी हालत, या इसी तरह देख लो, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बहार है, कभी खजां है। तो मुख्तलिफ ये चीजों के अहवाल को एक हालत से दूसरी हालत की तरफ फेरना, ये किसके कब्जे कुदरत में है? अल्लाह के। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसके बियदी ही उसके कब्जे कुदरत में है। यद किसे कहते हैं? हाथ को। हाथ को बियदी ही, उसके हाथ में, यानी उसके कब्जे कुदरत में है तसरीफ बियदी ही, अल्लाह के हाथ में, हाथ से मुराद क्या है, अल्लाह की कुदरत है, कुदरत है, कुदरत मुराद है, क्योंकि अल्लाह के मिसल कोई नहीं। तो अल्लाह के लिए जिस्म साबित करना, याद रखो ये कुफर है भाई। आप कहें अल्लाह की आंखें हैं, अल्लाह के कान हैं, या अल्लाह के हाथ हैं, या अल्लाह के पांव हैं, याद रखो ये कुफर है भाई, क्योंकि लैस कमिस्ली ही शैउन, अल्लाह के मिसल कोई चीज नहीं। तो ये तफसील आगे किताबों में आप पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह के लिए ये जिस्म को साबित करना ये कुफर है। वजह ये कि जो जिसका जिस्म होगा वो खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि जब जिस्म होगा तो जिस्म के लिए कोई बनाने वाला चाहिए भाई, जिस्म के लिए कोई, इसका मतलब है अल्लाह को किसी ने बनाया है, और जब किसी को किसी ने बनाया हो वो तो खुदा नहीं हो सकता। खुदा तो वो है जो खुद बखुद है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो अल्लाह के लिए जिस्म नहीं, अल्लाह के कान नहीं लेकिन अल्लाह सुनते हैं, अल्लाह की आंखें नहीं लेकिन अल्लाह देखते हैं, हर चीज सुनते हैं, हर चीज देखते हैं, लेकिन अल्लाह इन कानों के मोहताज नहीं है, अल्लाह इन आंखों के मोहताज नहीं है। समझ में आया भाई? तो अल्लाह के लिए तमाम सिफात, तमाम सिफात तो हैं, लेकिन अल्लाह के लिए ये हाथ पांव वगैरह साबित करना, ये क्योंकि ये कमजोरी की अलामत है भाई। मालूम हो वो किसी, जिसके हाथ पांव होंगे वो किसी का मोहताज होगा। जैसे इंसान है, इंसान के ये हाथ पांव कान हैं लेकिन खुद ब खुद हैं, ये अल्लाह ने बनाए हैं, अल्लाह ने बनाए हैं भाई। तो इसलिए बियदी ही, यद का यहां तर्जमा क्या करेंगे, कुदरत के। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदी ही तसरीफुल अहवाली, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसके कब्जे कुदरत में है तसरीफुल अहवाली, अहवाल का फेरना, अहवाल का बदलना, तमाम अहवाल का बदलना। व तखफीफुल अस्काल, तखफीफ का माना है हल्का करना, हल्का। अस्काल जमा है सिकल की, स्टिकल कहते हैं बोझ को, वजन, वजन, बोझों को, वजनी वजन को, हल, वजनों को हल्का करना, ये किसके कब्जे कुदरत में है, अल्लाह के। मुख्तलिफ किस्म के बोझ भाई, जैसे परेशानी का बोझ है, गम का बोझ है, कर्जे का बोझ है, इन सब बोझों को हल्का करना किसके कब्जे कुदरत में है, अल्लाह के कब्जे कुदरत में है भाई। वस्सलात वस्सलाम, और रहमत हो और सलामती हो, और रहमत और सलामती हो, नाजिल हो, अला सैयदिल हादीना, तमाम हिदायत देने वालों के सरदार पर। सैयद सरदार, हादी हिदायत देने वाला, हादी कौन सा सिगा है, हादी शाबाश, हादी क्या है, इसमें फाइल है भाई, हदा यहदी से, आपने पढ़ा या नहीं, हदा यहदी, हाँ रामिन, जैसे वहां क्या पढ़ा था आपने, रामिन हादिन, असल में हादिन, असल में क्या, हादियुन, या आखिर से गिर गई, तो किस वजह से इज्तिमाए साकिन है। अब तो आप सरफी हैं, कवानीन का पता है, आप देखते जाइए, आपने अबवाब याद किए, अबवाब याद है ना सबको, अबवाब याद होंगे तो हम बड़ी रफ्तार से चलते जाएंगे, और आप देखेंगे जो जो बातें ये जिक्र कर रहे हैं सब आपको पता है, कोई कभी कभार कोई नई बात भी आएगी वो आप नोट करते जाएंगे, लेकिन अबवाब आपको अजबर होने चाहिए भाई, अबवाब उसर्फ भाई मुकम्मल, आप सबको माशाल्लाह बेहतरीन याद है, हम बड़ी रफ्तार से इंशाल्लाह किताब हल करते हुए चलेंगे। तो सैयदिल हादीन, हादियों के सरदार, रहनुमाई करने वालों के सरदार, रहनुमाई करने वाले भाई, किस चीज की तरफ रहनुमाई करने वाले, इला महासिनिल अफाल, अफाल काम, महासिन अच्छे, अच्छे काम, महासिनिल अफाल अच्छे काम, वो जो, वस्सलात वस्सलाम, रहमत और सलामती नाजिल हो, आला सैयदिल हादीना, उन उन पर जो सरदार हैं रहनुमाई करने वालों के, इला महासिनिल अफाली, अच्छे अफाल की तरफ, किसकी तरफ,
अच्छे अफाल की तरफ।
देखो भाई माना समझो, अच्छे अफाल की तरफ जो लोग रहनुमाई करने वाले हैं, अच्छे अफाल की तरफ जो الہادین الی محاسن الافعال, رہنمائی کرنے والے ہیں کس کی طرف؟ اچھے افعال کی طرف. یعنی انبیاء مراد ہیں, پیغمبر مراد ہیں. بھائی انبیاء کس چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی؟ اچھے افعال کی طرف, توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں بھائی, اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کی تلقین کرتے ہیں, سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں, جرات کی تلقین کرتے ہیں, ہمت اور قوت کی تلقین کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کی مدد کرنا, ایک دوسرے کے کام آنا, ایک دوسرے کے خیال رکھنا, رشتہ داروں کی مدد کرنا, سب کی مدد کرنا, یہ تلقین کون کرتے ہیں؟ انبیاء. تو انبیاء کیا ہوئے؟ ہادین الی محاسن الافعال, وہ جو رہنمائی کرنے والے ہیں. الی محاسن الافعال کس کی طرف؟ اچھے افعال کی طرف. سید ان کے جو سردار ہیں, یعنی تمام انبیاء کے جو سردار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر رحمت اور سلامتی نازل ہو. اب ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ دوبارہ دیکھ لیں اوپر سے. الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہیں احوال کا پھیرنا اور بوجھوں کا کم کرنا. والصلاة والسلام على سید الہادین الى محاسن الافعال, اور رحمت اور سلامتی نازل ہو. ترجمہ باخر سے ہوگا, اچھے افعال کی طرف رہنمائی کرنے والوں کے سردار پر. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور رحمت اور سلامتی ہو. اب آخر سے ترجمہ, اچھے افعال کی طرف رہنمائی کرنے والوں کے سردار پر. وعلی آلہ, اور ان کی آل پر, یعنی ان کی پیروی کرنے والے. آل سے کیا مراد ہیں؟ پیر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے ہیں, یعنی اہل ایمان. اور بعضوں نے کہا آل سے مراد ہیں متقی مومنین, بھائی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے, اللہ کا ڈر ہے. تو رحمت اور سلامتی ان تمام انبیاء کے سردار پر بھی. وعلی آلہ, اور ان کی آل پر, ان پر بھی رحمت اور سلامتی ہو. وصحبہ, اور حضور کے صحابہ پر بھی, حضور کے صحابہ پر بھی. المزارعین له, جو ان کے مشابہ ہیں. مزارع کا معنی ہوتا ہے مشابہ ہونا, ایک چیز کا دوسرے جیسا ہونا. مثلا میں کہتا ہوں زید شیر جیسا ہے, کس چیز میں؟ بہادری میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یا دو بھائی ہیں ایک جیسے, ایک دوسرے جیسی شکل ہے, تو آپ کہتے ہیں یہ بھائی دوسرے بھائی جیسا ہے. تو ایک دوسرے کے مثل ہونا, مشابہ ہونا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزارع. مزارع کا کیا معنی؟ مشابہ. فعل مزارع کو بھی مزارع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اسم کے مشابہ ہے. کیا ہے؟ اسم. وہ آگے آپ نحو کے اندر پڑھیں گے. تو مزارع کا کیا معنی؟ مشابہ. المزارع, اور حضور کے وہ صحابہ. المزارعین لہو, جو مشابہ ہیں. لہو اس کے, کس کے مشابہ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ لہو کی حاض امیر کس کو راجے؟ سید الہادین, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ان کے وہ صحابہ. المزارعین لہو, جو کس کے مشابہ ہیں؟ حضور کے مشابہ ہیں. بھائی کس چیز میں مشابہ ہیں؟ فی الصفات والاعمال, صفات اور اعمال میں. صفات بھی حضور جیسی, اعمال بھی حضور جیسے. صحابہ کون ہیں بھائی؟ جن کی تربیت حضور نے کی تھی, حضور کی صفات, اپنی صفات ان کی طرح منتقل فرمائی بھائی. صحابہ بھی کیا تھے؟ حضور کی طرح سچ بولنے والے تھے. صحابہ بھی کیا تھے؟ آخرت پر ایمان رکھنے والے تھے. صحابہ حضور کی طرح جرت مند بہادر تھے. صحابہ حضور کی طرح اچھے اخلاق والے تھے. صحابہ حضور کی طرح نیکی کے تمام کام کرنے والے تھے. تو حضور کے راستے پر وہ چلتے تھے یا نہیں چلتے تھے؟ حضور ہی کے راستے پر چلتے تھے. حضور کی جو صفات ہوتی ان کو اپنانے کی کوشش کرتے. حضور کے جو اعمال ہوتے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, دوسروں کی مدد کرنا ہے, دوسروں کو معاف کر دینا ہے, اور زبان کو بری باتوں سے محفوظ رکھنا ہے, ہر چیز میں صحابہ کس کی پیروی کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. صفات میں بھی اور اعمال کے اندر بھی بھائی, اعمال کے اندر بھی. صفات بھی حضور جیسی تھیں, یعنی عقائد اچھے تھے, خوش اخلاق تھے, سچ بولنے والے تھے, और आमाल भी हुजूर जैसे थे, नमाजें पढ़ते, जकात देते, सच बोलते और दूसरों की मदद करते और किसी को तकलीफ नहीं देते थे। तो बात समझ में आ गई भाई अच्छी तरह? हाँ, फिर एक दफा तर्जमा देख लो भाई। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्र। भाई आप जो जो पढ़ते जा रहे हैं, आप उसके उस्ताद बनते जा रहे हैं। कल आपको कोई कहे मुझे ये जगह पढ़ा दो, तो ये ना कहे मैं मुताला करूंगा या मुझे भूल गई है फलां, नहीं नहीं, ये सबक जो सबक पढ़ो उसको बेहतरीन याद करो इस तरह से कि आपसे कोई पूछे तो आप उसको बिल्कुल उस्ताद की तरह पढ़ा सकें। भाई अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल व तख़फीफुल अथक़ाल। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसके कब्ज़े कुदरत में है तमाम अहवाल को फेरना और तमाम बोझों को कम करना, तमाम बोझों को हल्का करना। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़ाल। और रहमत और सलामती नाजिल हो अच्छे अफ़ाल की तरफ रहनुमाई करने वालों के सरदार पर, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। व अला आलिही, और उनकी आल पर, यानी उनकी पैरवी करने वाले मुत्तकी मोमिनीन पर। व सहबिही, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर। अल मुज़ारिईन लहु फिस्सिफाति वल आमाल, वो सहाबा जो हुजूर के मुशाबे हैं सिफात और आमाल के अंदर। मुसन्निफ ने यह खुतबा है भाई, खुतबा अल्लाह की हमद और सना बयान की, हुजूर पर सलात और सलाम को जिक्र किया, खुतबा चल रहा है भाई। और खुतबे में ऐसे अल्फाज लाना, अभी तो किताब नहीं शुरू की ना, अभी तो शुरू की दो चार लाइनें ही मुसन्निफ ने लिखी हैं, अभी खुतबा लिख रहे हैं, लेकिन खुतबे में अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, हुजूर पर सलात और सलाम को जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लफ्ज ले आए जिससे आगे किताब की तरफ खुद ब खुद इशारा हो रहा है कि मैं किस फन में किताब लिख रहा हूं। तसरीफ लाया नहीं भाई, वही इल्म सर्फ की तरफ, और तसरीफ का लफ्ज ले आए भाई। तख़फीफ, तख़फीफ आएगी या नहीं, हमजा के अंदर कोई भी तब्दीली की जाए आपने पढ़ा उसे क्या कहते हैं? तख़फीफ। और बाकी में तब्दीली की जाए वो क्या है? इलाल भाई। असकाल आपने पढ़ा भाई, कोई लफ्ज होगा वो कहते हैं ये सकील है, फिर उसमें तख़फीफ के लिए ये किया गया, दो हमजा इकट्ठे हो गए सकील थे, एक को क्या किया? गिरा दिया या उस बदल दिया, तो ये तख़फीफ सकील। अच्छा आगे आपने क्या पढ़ा? अल अफ महासिन इल अफाल। इल्म सर्फ में ज्यादा बहस होती ही किसकी है? अफाल की होती है भाई। अल मुजारईन लहू, फेले मुजारे भी आता है या नहीं, तो फेले मुजारे का भी जिक्र आ गया भाई, फेले मुजारे का भी जिक्र आ गया। तो खुतबे में ऐसे लफ्ज लाना जिससे आगे आने वाले किताब की तरफ, आगे आने वाले मकसद की तरफ इशारा हो जाए, इसको कहते हैं बराअत इस्तेहलाल। क्या कहते हैं? बराअत इस्तेहलाल। ये एक सनअत है जिससे कलाम में हुसन पैदा होता है भाई, और ये कोई आसान नहीं है कि बड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ऐसे लफ्ज लाऊं, और ये भी नहीं कि माना भी खराब ना हो। माना भी देखो, जब खुतबा भी आप तर्जमा पढ़ रहे थे आपको कोई पता नहीं था कि ये उन लफ्जों को ला रहे हैं जो आगे किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तर्जमा बेहतरीन हो रहा था, लेकिन फिर जब गौर किया उसी तर्जमे के लिए ऐसे ऐसे लफ्ज ले आए जिससे आगे आने वाले मकसद की तरफ इशारा कर दिया कि दरअसल मेरी ये किताब किसके अंदर है? इल्मे सर्फ के अंदर है। अभी आगे वो खुद बताएंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन इशारा कर दिया, तो इसको क्या कहते हैं? बराअत इस्तेहलाल, और इससे कलाम में हुसन पैदा होता है। तो मुसन्निफ का ये खुतबा बराअत इस्तेहलाल पर मुश्तमिल है। ये लफ्ज याद रखना है, भूलना नहीं। खुतबे में ऐसे लफ्ज लाना, खुतबे में ऐसे लफ्ज लाना जिससे आगे आने वाले मकसद की तरफ, यानी किताब की तरफ क्या हो जाए? इशारा हो जाए, उसे बराअत इस्तेहलाल कहते हैं। देखिए भाई, अब अम्मा बाद, फारसी किताब में पहले अम्मा बाद में गोयद बंदाए न्याजमंद कहता है। न्याजमंद बंदा, न्याजमंद का माना है نیازمند کا ایک معنی ہے محتاج محتاج، یا نیازمند کا ایک معنی ہے فرما بردار. تو جو بھی ترجمہ آپ کو اچھا لگے آپ کر سکتے ہیں. میں گویت بندہ نیازمند، نیازمند بارگاہ رب سمد، نیازمند بارگاہ رب سمد. بارگاہ کہتے ہیں دربار کو، رب سمد بے نیاز رب، بے نیاز رب، رب سمد. قل هو اللہ اللہ سمد، دیکھا سمد کا کیا معنی، بے نیاز، جو کسی کا محتاج نہ ہو اور دوسرے اس کے محتاج ہوں. تو یہاں بھی کہا رب سمد، وہ رب جو کیا ہے، سمد ہے، بے نیاز ہے، کسی کا حاجت مند نہیں. تو میں گوید بندہ نیاز مند بارگاہ رب سمد، کہتا ہے وہ بندہ جو محتاج ہے بے نیاز پروردگار کے دربار کا. وہ بندہ جو محتاج ہے، کس کا محتاج ہے؟ بے نیاز پروردگار کے دربار کا محتاج ہے، یعنی اللہ کا محتاج ہے. المعتصم، معتصم کا معنی ہے سہارا پکڑنا، پناہ پکڑنا، دامن تھام لینا. المعتصم بذیل سید الانبیاء، ذیل کہتے ہیں دامن کو، دامن کو. سید الانبیاء جو تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کے سردار کے دامن کو تھامنے والا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامنے والا، یعنی ہمارا، ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں تو حضور کے واسطے کے بغیر نہیں حاصل کر سکتے. بھائی کوئی شخص اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کا قریبی ہونا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، تو کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ حضور کے ذریعے اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، حضور کے بغیر نہیں، حضور کے راستے پر چلنا پڑے گا. کوئی حضور کو نہیں مانتا، جتنی مرضی عبادت کرے، کچھ بھی کرے، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں. تو حضور کے دامن کو تھامتے ہوئے تو مصنف کیا فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے دربار کا محتاج ہوں، محتاج ہوں. اور کس کے واسطے سے، کس کا دامن تھام رہا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کہتے ہیں میں گویت بندہ نیاز مند بارگاہ رب سمد، بے نیاز پروردگار کے دربار کا محتاج بندہ کہتا ہے، المعتصم بذیل سید الانبیاء، جو دامن کو تھامنے والا ہے تمام انبیاء کے سردار کے، تمام انبیاء کے سردار کے دامن کو تھامنے والا ہے، محمد عنایت احمد. نام کیا ہے میرا؟ محمد عنایت احمد. یہ مفتی عنایت احمد میں غفر لہ الاحد، یہ اپنے لیے دعا کر لی بھائی، غفر لہ الاحد، کہ الاحد وہ جو ایک ہے، یعنی اللہ، غفر لہ الاحد، وہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیں، اس کو معاف فرما دیں. یہ اپنے لیے، جیسے کہتے نہیں ہیں آپ بزرگوں کا جہاں کہیں نام آتا ہے آپ کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان پر کیا فرمائے، رحم. تو اپنا نام آیا تو اپنے لیے دعا لکھ دی، تاکہ جو بھی پڑھے گا، جو بھی طالب علم پڑھے گا، تو غفر لہ الاحد میرے لیے، وہ اس کی زبان سے خود بخود کیا جاری ہو جائے گی، دعا جاری ہو جائے گی. غفر لہ، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، کہ این رسالہ است، کہ یہ کیا ہے، ایک رسالہ. رسالہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو، ایک بڑی کتاب ہوتی ہے اور رسالہ کسے کہتے ہیں، چھوٹی کتاب. این رسالہ است، یہ ایک چھوٹا رسالہ، چھوٹی کتاب ہے. در علم صرف، کس علم میں؟ علم صرف میں، کہ بپاس خاطر شفیق محسن مجمع محاسن. اچھا، کہ بپاس خاطر، پاس کہتے ہیں رعایت رکھنا، خاطر کہتے ہیں دل کو، بپاس خاطر دل کی رعایت رکھتے ہوئے، یعنی ان کی دل جوئی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، بپاس خاطر ان کے دل کی. یہ کسی نے کہا ہوگا نا، آگے ذکر کر رہے ہیں حافظ وزیر علی صاحب، انہوں نے درخواست کی ہوگی میرے لیے کوئی رسالہ لکھیں، میں بھی قید میں ہوں، آپ بھی قید کے اندر ہیں، چلے میں آپ سے کچھ علمی فائدہ حاصل کر. تو ان کے دل کی رعایت رکھتے ہوئے، ان کی درخواست کی رعایت رکھتے ہوئے، بپاس خاطر شفیق، شفیق وہ جو ان کے دل کی رعایت رکھتے ہوئے، کن کے دل کی رعایت رکھتے ہوئے، شفیق جو شفقت کرنے والے ہیں، हम पर क्या करने वाले हैं, हमसे यानी हमसे अच्छा सुलूक करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, मुहसिन शफीक हैं, मुहसिन हैं यानी नेकी करने वाले हैं, एहसान करने वाले हैं, मजमाए महासिन, और अभी महासिन गुजरा, अच्छी खूबियां, मजमाए महासिन जिनमें अच्छी खूबियां जमा, ये वो आगे आने वाले जो कोई बड़े सरदार कोई बड़े आदमी था, कोई वजीर वगैरह होगा या नवाब होगा जिसको अंग्रेजों ने कैद किया हुआ था वहां पर, उनकी सिफतें जिक्र कर रहा है। मैंने किसकी दिल की रियायत रखने के लिए किताब लिखी, जो मेरे शफीक हैं, मुझ पर शफकत करने वाले, मुहसिन हैं, मेरे ऊपर एहसान करने वाले हैं, मजमाए महासिन, अच्छी खूबियां सारी उनमें जमा हैं, और नाम क्या, हाफिज वजीर अली साहेब, ब जजीरा अंडमैन बमारज तहरीर दरामद। अंडमैन और अंडमान मैंने बताया दोनों तरह पढ़ सकते हैं भाई, अंडमान भी और अंडमैन भी, ये जजीरे का नाम था, और इसी को काला वहीं पर एक जेल थी भाई, बहुत खौफनाक जेल, और उसको क्या कहते थे, काला पानी, काला पानी, तो कभी उस पूरे जजीरे को भी कह देते हैं, वो जेल इतनी खौफनाक थी कि उस काले रंग के पत्थरों वगैरह से बनाई गई थी, उसकी वजह से उसको काला पानी कहते थे, क्या कहते थे, काला पानी, तो कभी उस जजीरे को ही काला पानी कह देते, क्योंकि इसी जेल की वजह से तो वो जजीरा मशहूर था, लोग जानते ही नहीं थे पहले तो। उनकी खातिर जो है, ब जजीरे अंडमैन बमारज तहरीर दर आमद, जजीरे अंडमैन में या यूं कहो जजीरे अंडमान में बमारज तहरीर दर आमद, तहरीर के महल में यानी लिखी गई, जो कहां पर लिखी गई ये किताब, जजीरा अंडमैन अंडमान में या अंडमैन में, हाफिज वजीर अली साहिब के लिए ये किताब मारज तहरीर में आई यानी लिखी गई, लिखी गई। तो अंडमैन ये जजीरे का नाम है, और अंडमैन भी पढ़ सकते हैं इसको, और अंडमान भी, अंडमान भी कहते हैं इस जजीरे को, अंडमैन भी कहते हैं। वह हकीर दरआ जजीरा, और ये हकीर अपने अपने बारे में कह रहे हैं, अपने लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, हकीर यानी ये आजिज जो है, दरआ जजीरा उस जजीरे में, कौन सा जजीरा, जजीरा है अंडमैन में, अज नैरंग तकदीर बूदा, तकदीर की नैरंगियों से आया था, नैरंग नैरंगी कहते हैं रंगा रंग का होना, मुख्तलिफ रंगों का होना, किस्म किस्म के रंगों वाला होना, तकदीर भी तो मुख्तलिफ रंगों वाली होती है, कभी गरीब को बादशाह बना देती है, कभी बादशाह को फकीर बना देती है, कभी इंसान खुशियों में होता है तो कभी गम में मुब्तला हो जाता है, तो तकदीर भी क्या है, इसको कहते हैं नैरंगीय तकदीर, तकदीर का मुख्तलिफ रंगों वाला होना, मुख्तलिफ किस्म का होना। तो मुसन्निफ क्या फरमाते हैं कि हकीर दरा जजीरा अज नैरंग तकदीर बूदा, कि मैं हकीर जो है, मैं आजिज इस जजीरे में तकदीर की नैरंगियों की वजह से था, तकदीर के अजाइबात से मैं यहां पहुंच गया, मैं तो अपने वतन की और मुसलमानों की आजादी की जंग लड़ रहा था, लेकिन अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार होकर मैं यहां पहुंच गया, तो यूं को मुझे तकदीर ने यहां पर पहुंचा दिया, किसने, तकदीर नैरंगी तकदीर ने, यानी यूं को तकदीर की गर्दिशों ने मुझे यहां पहुंचा। दर आ जजीरा अज नैरंग तकदीर बूदा, इस जजीरे में तकदीर की नैरंगियों से था, वह किताबे अस हेच इलम नज़्द खुद नदाश्त, और किसी इलम की कोई किताब अपने पास नहीं रखता था, यानी किसी इलम की कोई किताब मेरे पास न थी, ये रिसाला रा बवज़े निगाश्त, इस रिसाला को मैंने, वज़ा कहते हैं तरीके को, रा बवज़े निगाश्त, इसको मैंने ऐसे तरीके से लिखा, निगाश्तन का माना लिखना, इस रिसाला रा बवज़े निगाश्त, इस रिसाले को मैंने ऐसे तरीके से लिखा कि बजाय मीजान और मुनशाइब व पंचगन जो जुबदा और सरफ़े मीर बकार आयत, ये सर्फ की किताबें हैं, मीजान मुनशाइब पंचगंज जुबदा और सरफ़े मीर, तो कहते हैं इन किताबों की जगह पर ये बकार आयत काम पर आए, इन किताबों की जगह ये मेरी किताब काम आए, वह बर फवायदे दीगर हम मुश्तमिल बाशद, और ये किताब दूसरे और फायदों पर भी मुश्तमिल होगी, अच्छा वबर फवायदे दीगर हम मुश्तमिल बाशद और दीगर फायदों पर भी मुश्तमिल हो। वो बातें जो मीजान पंचगन मुनशाइब वगैरह में हैं उनकी जगह काम आए, यानी उनमें जो बातें हैं वो भी इसके अंदर हों। वह बर फवाइद दीगर हम मुश्तमिल बाशद और दीगर फवाइद पर भी मुश्तमिल हो, यानी इसमें ऐसे भी फायदे हैं जो उन किताबों में नहीं है। नफ़अल्लाह बिही तालिबीन, अब ये दुआ दे रहे हैं भाई, अपनी किताब के लिए भी दुआ कर रहे हैं और तलबा के लिए भी। नफ़ा अल्लाह बिही तालिबीना, अल्लाह नफा दे बिही इस किताब के जरिए अर तालिबीना, किसको? तालिब इल्म, तालिब इल्मों को इसके जरिए नफा दे। वराज़ाक़हुम व इय्याया इत्तिबा सुन्नति सय्यिदिल मुरसलीना, और रज़ाक़हुम और नसीब फरमाए उन तलबा को भी। व इय्याया और मुझे भी। रज़क, रिजक किसे कहते हैं? आप कोई चीज देना, तो यहां रजक का क्या माना? आता करना, देना। अच्छा वह रजा का हम इया और आता करे मुझे भी और उन तुलबा को भी। क्या आता करे अल्लाह, क्या नसीब फरमाए? इत्तेबा सुन्नति सैयदिल मुरसलीना, उस तमाम अंबिया के जो सरदार हैं उनकी सुन्नत की पैरवी, उनकी सुन्नत की इतबा की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही अजमाइन, अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए उन पर भी और उनकी आल पर भी। अजमाइन सब के सब पर। रिसाला मुश्तमिल अस्त पर यक मुकद्दमा व चहार बाब व खातिमा, और ये रिसाला मुश्तमिल है एक मुकद्दमे पर और चार बाब और एक खातिमा। इस किताब में क्या है? एक मुकद्दमा है, चार बाब हैं और एक खातिमा है भाई, खातिमा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखिए भाई, उर्दू की किताब भी जल्दी जल्दी देख लीजिए भाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल व तखफीफुल अथकाल व सलातु व सलाम अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिही व सहबिहिल मुज़ारईन लहू फिस सिफ़ाति वल अमाल अम्मा बाद। परवरदिगार बेनियाज का बंदा नियाजमंद, परवरदिगार बेनियाज वो अल्लाह जो बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं, उसका बंदा नियाजमंद, उसका मोहताज बंदा, उसका फरमाबरदार बंदा। मैंने बताया नियाजमंद के दो माना है, मोहताज भी और फरमाबरदार। चाहे मोहताज कर रहे हैं वो बंदा जो अल्लाह का मोहताज है या वो बंदा जो अल्लाह का फरमाबरदार है। मोहम्मद इनायत अहमद, जिसका नाम क्या है? मोहम्मद इनायत अहमद है। गुफिरा लहुल अहद, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए, वो एक अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। अर्ज करता है, वो अर्ज करता है कि इल्मे सर्फ की किताब शफीक मोहसिन जामिया महासिन हाफिज वजीर अली साहिब की खातिर जजीरा अंडमान में तसनीफ की गई थी। तर्जमा समझ में आ रहा है? ये किताब किसके लिए तसनीफ की गई? शफीक, जो शफकत करने वाले हैं, मोहसिन हैं, एहसान करने वाले हैं, जामिया महासिन हैं, यानी जिनमें सारी खूबियां जमा हैं। कौन है? हाफिज वजीर अली साहिब की खातिर कहां पर? जजीरा अंडमान में तसनीफ की गई थी। जजीरा अंडमान में मुझे करिश्मा तकदीर ने पहुंचा दिया था। करिश्मा का माना है अनोखी चीज, अजीब चीज, जादू वगैरह भाई, कोई अनोखी चीज अजीब चीज हो तो उसको कह देते हैं करिश्मा। तो जजीरा अंडमान में मुझे करिश्मा तकदीर ने पहुंचा दिया था, यानी तकदीर के अजायब बात ने, तकदीर के अजायब बात ने मुझे कहां पहुंचा दिया? अंडमान में। मैं तो अच्छा भला तदरीस में और दीगर दीन के कामों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर मसरूफ था, लेकिन तकदीर की अजीब बातों में से एक अजीब बात की उसने मुझे कहां पहुंचा दिया? जजीरा अंडमान में। बवक्ते तस्नीफ, किसी इलम की कोई किताब मेरे पास न थी। हकीर ने यह किताब इस अंदाज से लिखी है कि मीजान मुनशाइब पंजगंज जुबदा, ये क्या पढ़ना है? जुबदा, और सरफ मीर के कायम मकाम हो सके। कायम मकाम तभी होगी ना जब उनकी सारी बातें क्या हों? इस किताब के अंदर जिक्र हों और दूसरे फवाइद पर भी मुश्तमिल हो। और नीर इसमें और भी फायदे हैं। नफा अल्लाह बिही तालिबीन, अल्लाह नफा दे इस किताब के जरिए तलबा को। व रज़क़हुम, और तलबा को अता करे, नसीब करे। व इय्याया, और मुझे भी, क्या नसीब करे? इत्तेबा सुन्नति सय्यिदिल मुरसलीन, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء کے جو سردار ہیں ان کی سنت کی اتباع یعنی ان کی سنت کی پیروی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ اجمعین رحمت اللہ نازل فرمائے ان پر بھی اور ان کی ساری آل پر بھی. یہ رسالہ ایک مقدمہ اور چار ابواب پر مشتمل ہے. آگے مقدمہ شروع ہو رہا ہے. یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی, حل ہو گیا سارا کچھ تو ٹھیک ہے, یہ طریقہ ٹھیک ہے. فارسی بھی آپ دیکھتے جائیں گے, آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, فارسی میں استعداد آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. کچھ نہ کچھ فارسی تو آپ نے پہلے بھی پڑھی ہے, گلستان وغیرہ بھی پڑھ کر آئے ہیں, اور ابواب الصرف میں بھی تھوڑی سی فارسی تھی. تو یہ اب پورا رسالہ پڑھ لیں گے, انشاءاللہ آپ کی استعداد بھی بڑھ جائے گی, اور اردو بھی ساتھ ساتھ پوری کتاب ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے, اچھی طرح سارا حل ہو گیا. جی, کوئی بات پوچھنے والی تو نہیں؟ جی ہاں, ان کا دوبارہ سن لیں. بید ہی اس کے قبضہ قدرت میں ہے, تصریف الاحوال احوال کا پھیرنا بدلنا, احوال کا بدلنا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. کسی کو بادشاہ بناتے ہیں, اگلے دن اس جیل کی کوٹھڑی میں اس کو اللہ پہنچا دیتے ہیں. یہ احوال کو کون بدلتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. کوئی غریب ہوتا ہے, کوئی مالدار بعد میں بن جاتا ہے, کوئی مالدار ہوتا ہے چند سال بعد آپ دیکھتے ہیں بالکل وہ فقیر اور محتاج بنا ہوا ہے. کسی کو آپ دیکھتے ہیں آج خوشیوں بھری زندگی گزار رہا ہے, اور کچھ دنوں بعد آپ دیکھتے ہیں وہ غم کی وجہ سے اس کے جینا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی غم اور تکلیف میں مبتلا تھا, اللہ اس کو خوشیاں نصیب فرما دیتے ہیں. اسی طرح میں نے بتایا, گرمی ہے, سردی ہے, بارش ہے, بہار ہے, خزاں ہے, یہ ساری ہر طرح کے جو احوال ہیں, ایک حال سے بدلنا دوسرے حال کی طرف, یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اور اسی طرح وتخفیف الاثقال, بوجھوں کو کم کرنا, وزن کم کرنا. دیکھو وزن بوجھ مختلف قسم کے ہیں, کبھی پریشانی کا بوجھ ہوتا ہے, کبھی قرضے کا بوجھ ہوتا ہے, کبھی غم کا بوجھ ہوتا ہے, کبھی آپ سنتے ہیں کہ فلاں کو ٹینشن ہے بڑی, فلاں ڈپریشن میں ہے بہت زیادہ. یہ مختلف قسم کے بوجھ ہیں جو دماغ پر مسلط ہو جاتے ہیں, اور تکلیف اور غم میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ ہر طرح کے بوجھ جو ہیں ان کو ہلکا کرنا, یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اب معنی سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے, بس جی, باقی حل ہو گیا. چلیے بس بھائی, هذا هو المرام, الله أعلم بحقيقة الكلام.